दिन ताजा था, धूल भरी फुर्तीली बसंती हवा चल रही थी। दोनों घरानों की बुजुर्ग महिलाएं फीके फर और पीली सेबल की खाले पहने थी और अगली पंक्तियों से उठती कपूर की गंध वेदी के सोसन फूलों की हल्की महक को लगभग दबा रही थी।
गिरजे के प्रबंधक का इशारा पाकर न्यूलैंड आर्चर पोशाक कक्ष से निकला और अपने सहबर के साथ ग्रेस चर्च की वेदी की सीढ़ियों पर आ खड़ा हुआ। इशारे का मतलब था कि दुल्हन की बग्घी दिख गई है, पर तय था कि लॉबी में ईस्टर के गुलदस्ते सी जमा सखियों के साथ अभी देर तक सवार सलाह चलेगी। इस अनिवार्य अंतराल में दूल्हे को अकेले मेहमानों की निगाहें झेलते खड़ा रहना था और आर्चर ये रस्म भी उसी धीरज से निभा रहा था जिससे वे औपचारिकताएं जो न्यूयॉर्क के विवाह को सृष्टि के आरंभ की रस्म जैसा बना देती थी, जिस राह पर उसे चलना था वहां सब कुछ एक जैसा सहज था या एक जैसा कष्टकर, जैसे कभी वो दूसरे दूल्हों को इसी भूल भुलैया से पार कराता था, वैसे ही अब वो अपने सहबर के हड़बड़ाए निर्देशों का पालन कर रहा था। अब तक उसे लगभग यकीन था उसने हर कर्तव्य ठीक ठाक निभाया था। सखियों के लिए सफेद बकाइन और कुमुदिनी के 8 गुलदस्ते समय से तैयार थे। 8 अगुआओं के सोने नीलम कफ बटन और सहबर की लहसुनिया पिन भी बिना अड़चन आ गई थी। आर्चर देर रात तक जागकर दोस्तों और पुरानी प्रेमिकाओं के तोहफों के लिए धन्यवाद के वाक्य बदल बदल कर लिखता रहा था। बिशप और पादरी की भेंट सहबर की जेब में सुरक्षित थी। सफर का सामान और बदलने के कपड़े श्रीमती मिंगट के घर पहुंच चुके थे जहां विवाह भोज होना था और नवदंपति को गुप्त मंजिल तक ले जाने वाली रेल का निजी डिब्बा भी आरक्षित था। सुहागरात की जगह को गुप्त रखना
पुरखों से चली आई सबसे पवित्र वर्जनाओं में से एक था। अंगूठी संभाल कर रखी है ना? भारी दायित्व से घबराए अनुभवहीन वैन डर लाइडन न्यूलैंड ने फुसफुसाया। आर्चर ने और दूल्हों वाली हरकत दो हराई। नंगा दाहिना हाथ पूरे वास्कट की जेब में डाल तसल्ली की कि छोटी सोने की अंगूठी। खुदा था न्यूलैंड से मई को अप्रैल 1871 अपनी जगह है। फिर पहले वाली मुद्रा में लौटकर बाएं हाथ में ऊंचा रेशमी टोप और काली
सिलाई वाले मोती रंग के दस्ताने थामे गिरजे के दरवाजे को ताकने लगा। सिर के ऊपर हैंडल का विवाह गीत नकली पत्थर की छत तले गूंज रहा था। उस लहर पर अनगिनत शादियों की धुंधली यादें तैर आईं, जब वो प्रसन्न उदासीनता से दूसरी दुल्हनों को गलियारे से दूसरे दूल्हों की ओर तैरते देखता था। बिल्कुल ओपेरा के उद्घाटन की रात जैसा है, उसने सोचा। वही चेहरे, वही बॉक्स, नहीं गिरजे की बेंचें, पहचानते हुए, और सोचने लगा, प्रलय की तुरही बजेगी तब भी क्या श्रीमती सेल्फ्रिज मेरी वही विशाल शुतुरमुर्ग टोप पहने होंगी, श्रीमती ब्यूफर्ट के वही हीरे, वही मुस्कान होगी, और क्या परलोक में भी उनके लिए आगे की कुर्सियां तैयार होंगी। अगली पंक्तियों के जाने पहचाने चेहरों को बारी बारी देखने का समय भी बचा था। जिज्ञासा और रोमांच से चमकते स्त्रियों के तीखे भाव और दोपहर के भोजन से पहले सूट पहनने और भोज में खाने पर झपटने की मजबूरी से चिढ़े पुरुषों के चेहरे। भोज बूढ़ी कैथरीन के घर है, अफसोस, रेजी चिवर्स की आवाज का अनुमान था, पर लवल मिंगट ने अपने बावर्ची से खाना बनवाया है तो बुरा नहीं, और सिलर्टन जैक्सन का रोबीला स्वर जोड़ता सुनाई दिया, मित्र अभी तक नहीं सुना?
इस बार भोज छोटी मेजों पर बिल्कुल नए अंग्रेजी ढंग से परोसा जाएगा।
आर्चर की नजर बाई बेंच पर ठहरी, वहां माँ वैन डर लाइडन की बाँ थामे आई, शांतिली घूंघट तले चुप आंसू बहा रही थी, हाथ नानी के अरमीन मफ में। बेचारी जेनी, आर्चर ने बहन को देखकर सोचा, गर्दन जितनी घुमाए अगली पंक्तियों के कुछ लोग ही दिखेंगे, ज्यादातर उबाऊ न्यूलैंड और डेगोनेट।
परिवार की बेंचे अलगाने वाले सफेद रिबन के पास ब्यूफर्ट खड़ा था। लंबा कद, तमतमाया चेहरा, घमंडी निगाहों से महिलाओं को खंगालता। उसके पास चांदी सी चिंचला और बनफशों से सजी उसकी पत्नी बैठी थी। रिबन के उस पार चिकने बाल काढ़े लॉरेंस लेफ्ट्स ऐसे तना खड़ा था मानो समारोह की अध्यक्षता करने वाले अदृश्य शिष्टता के देवता का पहरा दे रहा हो। आर्चर ने सोचा लेफ्ट्स की पैनी आंख इस विवाह में कितनी खामियां ढूंढ निकालेगी, और अचानक याद आया कि कभी वो खुद भी इन बातों को अहम मानता था। जिनमें उसके दिन खपते थे वे अब बालवाड़ी के खेल सी लगती थीं।
या मध्यकालीन पंडितों की उन अवधारणाओं पर अंतहीन बहसों सी, जिन्हें कोई समझा ही नहीं। शादी के तो हफे प्रदर्शित हों या नहीं, इस पर छिड़ी तीखी बहस विवाह से पहले की आखिरी घड़ियों तक चली, और आर्चर को विश्वास ही नहीं होता था कि सयाने लोग ऐसी जरा सी बात पर इतने भड़क सकते हैं। ये बहस तभी नकारात्मक ढंग से निपटी जब श्रीमती वेलैंड ने गुस्से के आंसुओं के साथ पुकारा, इससे तो अच्छा है अखबार नवीसों को ही घर में छोड़ दूं। पर एक जमाना था जब आर्चर की भी इन सब मुद्दों पर दृढ़ और स्पष्ट राय थी, जब उसके छोटे से कबीले की रीतियों और शिष्टाचार की हर बात उसे विश्व भर के महत्व की लगती थी, और उसी दौरान कहीं आर्चर ने सोचा सच्चे लोग कहीं जी रहे थे
और उनके साथ सच्ची बातें घट रही थी। वे आ गए, सहबर ने उत्तेजित होकर फुसफुसाया, पर आर्चर बेहतर जानता था।
दरवाजे का सावधानी से खुलना बस अस्तबल मालिक ब्राउन साहब, जो कभी कभी काले चोगे में गिरजे के सहायक का काम करते थे, का हालात का जायजा लेना था। दरवाजा फिर धीरे से बंद हो गया। थोड़ी देर बाद वो शान से पूरा खुला और गिरजे में हल्की हलचल दौड़ गई। परिवार आ गया। सबसे पहले श्रीमती वेलैंड बड़े बेटे की बाँह थामे प्रकट हुईं। उनके बड़े सुर्ख चेहरे पर विवाह के अनुरूप गंभीरता थी। आलूचा रंग की साटन पोशाक, हल्के नीले किनारे और नीले शुतुरमुर्ग पंखों वाला साटन बोनट प्रायः सराहा गया, पर वे श्रीमती आर्चर के सामने वाली बेंच पर बैठ भी नहीं पाई थी
कि मेहमान गर्दनें उचकाकर देखने लगे कि पीछे कौन आ रहा है। एक दिन पहले से अफवाह थी कि श्रीमती मैनसन मिंगट अस्वस्थ होते हुए भी विवाह में आने की ठान चुकी हैं। ये उनके साहसी स्वभाव से इतनी मेल खाती थी कि क्लबों में शर्तें लगी, क्या वे गलियारे से चलकर बेंच में समा पाएंगी। उन्होंने बढ़ई भेजकर जचवाया था कि बेंच का सिरे का तख्ता निकल सकता है या नहीं, पर नतीजा निराशाजनक रहा, और पूरा दिन परिवार ने उन्हें ये योजना तौलते देखा कि बड़ी पहियेदार रोगी कुर्सी पर गलियारे से जाकर वेदी तले सिंहासन सी विराजे। इस विचित्र नुमाइश की कल्पना घर वालों के लिए इतनी पीड़ादायक थी कि जिसने खोज निकाला कि वो कुर्सी गिरजे के द्वार से फुटपाथ तक तने शामियाने के खंभों के बीच से गुजर ही नहीं सकती, उस पर वे सोना लुटा देना चाहते थे। शामियाना हटाना तो सोचा भी नहीं जा सकता था। बाहर दर्जने और अखबार नवीस तिरपाल की सिलाइयों तक पहुंचने को धक्कम धक्का कर रहे थे। दुल्हन को उस भीड़ के आगे करने का ख्याल ही योजना को जड़ से मार गया। फिर भी बुढ़िया ने पल भर ये संभावना तौली जरूर। हे भगवान, वे मेरी बच्ची की तस्वीर खींचकर अखबारों में छाप देंगे। माँ की आखिरी योजना का संकेत मिलते ही श्रीमती वेलैंड कराह उठी और पूरा परिवार उस अभद्रता की कल्पना से सिहर कर पीछे हट गया। अंत में बूढ़ कैथरीन झुकी, पर ये शर्त मनवा कर कि विवाह भोज उन्हीं की छत तले होगा। हालांकि वॉशिंगटन स्क्वायर वाले रिश्तेदार भुनभुनाते थे वेलैंड का घर दो कदम पर होते हुए ब्राउन को खास किराया देकर।
दुनिया के छोर तक जाना उन्हें खलता था।
ये सब जैक्सन परिवार ने खूब फैलाया। फिर भी जोखिम पसंद करने वाले कुछ लोग अब भी मानते थे कि बूढ़ी मिंगट गिरजे में प्रकट होंगी, पर उनकी जगह जब बहू आई तो मेहमानों की उम्मीद ठंडी पड़ गई। नई पोशाक में बमुश्किल समाने की मशक से लाल पड़े चेहरे और पथराई आंखों वाली श्रीमती लवेल मिंगट ने अपनी जगह ली, और सास के न आने की निराशा उतरते ही सबने माना कि बैंगनी साटन पर उनकी काली शांतिली लेस खूब फबी है और ऊपर पारमा बनफशों वाला बोनट श्रीमती वेलैंड
के नीले आलूचा रंगों से बढ़िया विरोधाभास रचता है। इसके उलट मिंगट साहब की बाँह थामे आती लंबी दुबली नखरीली चाल वाली महिला धारियों झालरों और लहराते दुपट्टों में लिपटी दूसरा ही प्रभाव छोड़ती थी। ये आखिरी छाया मूर्ति नजर में आते ही आर्चर का दिल पल भर को भिंच कर थम सा गया। वो मान रहा था कि मार्कीजा अब भी वॉशिंगटन में है। महीना भर पहले वे भांजी के साथ वहां गई थी। कार्वर के प्रवचनों में बहकर प्रेम घाटी में शामिल होने जा रही मौसी को बचाने के ओलेंस्का के निश्चय से किसी को उम्मीद नहीं थी कि दोनों में से कोई विवाह में लौटेगी। आर्चर टकटकी बांधे मेडोरा की चमकीली आकृति को देखता रहा, ये देखने को तना हुआ कि पीछे कौन आता है, पर वो छोटा सा जुलूस वही खत्म हो गया। परिवार के बाकी सदस्य बैठ चुके थे और 8 लंबे अगुआ प्रवासी पक्षियों से जुटकर बगल के दरवाजों से लॉबी की ओर खिसक रहे थे।
न्यूलैंड, वो देखिए, वो आ गई, सहबर ने फुसफुसाया।
आर्चर चौंक कर संभला। लगता है उसका दिल काफी देर थमा रहा था, क्योंकि सफेद गुलाबी जुलूस सचमुच बीच के गलियारे के आधे रास्ते तक आ पहुंचा था। बिशप, पादरी और सफेद पंखों वाले दो सहायक फूलों से लदी वेदी के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। स्पोर की सिम्फनी के पहले स्वर दुल्हन के आगे पंखुड़ियों से बिखर रहे थे। आर्चर ने आंखें खोली, पर क्या वे सचमुच बंद थीं जैसा उसे लग रहा था, और महसूस किया कि उसका दिल अपना रोज का काम फिर शुरू कर रहा है। वेदी पर गूंजता संगीत, सोसन की महक, पास आती ट्यूल और नारंगी के फूलों की बादल सी दुल्हन, खुशी के आंसुओं से अचानक विकृत माँ का चेहरा, पादरी की धीमी आशीष वाणी, 8 गुलाबी सखियों और 8 काले परिधानों वाले अगुवाओं की सधी हुई चाल, ये सारे दृश्य स्वर संवेदन अपने आप में जाने पहचाने थे, पर उससे अपने नए नाते में इतने अजनबी, इतने निरर्थक लगे
कि दिमाग में गड्ढमड होने लगे। उसने सोचा, हे भगवान, अंगूठी तो है ना। फिर दूल्हों की उसी घबराई मुद्रा में जेब टटोली। तभी एक पल में मैं उसके बगल में थी। उसकी दमकती मुस्कान से फूटती आभा ने उसकी संज्ञाहीनता में हल्की गर्माहट भर दी। आर्चर सीधा हुआ, उसकी आंखों में देखकर मुस्कराया।
प्रिय जनों, आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं, पादरी ने सुरीली आवाज में विधि आरंभ की। अंगूठी मैं की उंगली में पहनाई गई। बिशप का आशीर्वाद मिला। सखिया जुलूस में अपनी जगह लौटने को तैयार हुई, और ऑर्गन मेंडेलसोन का विवाह गीत छेड़ने के आसार दिखाने
लगा, जिसके बिना न्यूयॉर्क में कोई नव दंपति कभी दुनिया के सामने नहीं आया था। बांह थामिए, अरे दुल्हन को बांह तो दीजिए, छोटे न्यूलैंड ने तनी आवाज में टोका।
आर्चर समझ गया कि वो फिर किसी अनजानी दिशा में बह गया था। उसे वहाँ किसने धकेला? शायद बगली हिस्से में पल भर दिखा, टोप तले काला घुंघराला जूड़ा, पर वो टोप लंबी नाक वाली अनजान महिला का निकला। उस छवि से इतनी अलग कि उसे भ्रम का शक हुआ, और अब वो और उसकी पत्नी मेंडेलसोन की कोमल लहरों पर सवार बीच के गलियारे से धीरे धीरे उतर रहे थे। खुले दरवाजों से बसंत का दिन उन्हें बुला रहा था, और सफेद फूल गुच्छे बांधे श्रीमती वेलंड के कत्थई घोड़े तिरपाल की सुरंग के छोर पर
इतराते गर्व से अकड़ते दिख रहे थे।
कॉलर पर उससे भी बड़ा सफेद गुच्छा लगाए नौकर ने मे का सफेद लबादा उसके कंधों पर डाला, और आर्चर उछलकर ब्रूम गाड़ी में उसके पास जा बैठा। मे ने विजय भरी मुस्कान से उसकी ओर मुड़कर देखा, और घूंघट के नीचे दोनों के हाथ जुड़ गए। मेरी प्यारी, आर्चर ने कहा, और अचानक वही काली खाई उसके सामने मुंह खोले खड़ी थी, और उसे लगा कि वो उसमें गहरे और गहरे धंसता जा रहा है। फिर भी उसकी आवाज नरम और चहकती रही। हाँ, सच में लगा कि अंगूठी खो बैठा। बेचारा दूल्हा इससे न गुजरे तो शादी पूरी ही नहीं होती। पर इंतजार तो तुमने कराया, सोचने का पूरा समय मिल गया कि क्या क्या अनर्थ हो सकते हैं। मैंने अचानक मुड़कर 5वें एवेन्यू के बीचों बीच उसके गले में बाहें डालकर उसे चौंका दिया।
पर जब तक हम साथ हैं, अब कुछ भी नहीं होगा, है ना न्यूलैंड?
हर बात इतनी बारीकी से तय थी कि भोज के बाद नव दंपति को सफर के कपड़े पहनने, हस्ती सखियों और रोते माता पिता के बीच मिंगट की सीढ़ियां उतरने और चावल जूतियों की बौछार में गाड़ी में बैठने का समय मिला। फिर स्टेशन पर मंजे यात्रियों से साप्ताहिक खरीदने और उस निजी डिब्बे में जमने का भी, जहां नौकरानी कबूतर रंग लबादा और लंदन का नया श्रृंगार बैग रख गई थी।
राइनबेक की बूढ़ी दूलाख मौसिया श्रीमती आर्चर के साथ न्यूयॉर्क में हफ्ता बिताने का मौका पाकर नव दंपति को खुशी खुशी अपना घर दे बैठी, और आर्चर फिलाडेल्फिया या बाल्टीमोर के होटलों के घिसे पिटे सुहाग कक्ष से बचने की राहत में उतनी ही खुशी से मान गया। मे को देहात जाने की बात बेहद भाई, और आठों सखियों की उनके रहस्यमय ठिकाने का पता लगाने की नाकाम कोशिशें देख वो बच्चों सी मगन रहती। देहात में उधार का घर लेकर रहना बहुत अंग्रेजी माना गया, और इस बात ने उस विवाह को, जिसे सब साल का सबसे शानदार विवाह मान चुके थे, आखिरी थसक दे दी। पर घर है कहाँ, ये दूल्हा दुल्हन के माता पिता के सिवा कोई नहीं जान सकता था। पूछने पर वे होठ भींच कर रहस्य से कहते, अरे हमें भी तो नहीं बताया, जो
सच ही था, क्योंकि बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी।
रेल के निजी डिब्बे में जमने के बाद जब गाड़ी लकड़ी के अंतहीन उपनगर पीछे छोड़ फीके बसंती परिदृश्य में निकली, तो बातचीत आर्चर की उम्मीद से कहीं सहज चल पड़ी। में नजर और लहजे में अब भी कल की वही निर्मल लड़की थी और विवाह की घटनाएं अपने दूल्हे से चहकते हुए फिर भी सहज भाव से बांट रही थी, जैसे कोई सखी किसी अगुआ से समारोह की बातें दोहरा रही हो। पहले आर्चर को लगा कि ये सहजता भीतर की काप छिपाने का पर्दा है, पर उसकी निर्मल आंखों में केवल शांत मन झलकता था। वो पहली बार पति के साथ अकेली थी, पर पति तो कल तक का वही आत्मीय साथी था। उसे आर्चर जितना प्रिय कोई नहीं था, आर्चर जितना विश्वसनीय कोई नहीं, और सगाई विवाह के इस सुखद अभियान की चोटी यही थी उसके साथ अकेले यात्रा पर निकलना।
बड़ों की तरह और अब सचमुच की विवाहित स्त्री की तरह
हैरत थी, जैसा उसने मिशन बाग में जाना था कि इतना गहरा भाव कल्पना के ऐसे अभाव से कैसे निपटा है। पर उसे याद आया कि तब भी अंतरात्मा का बोझ उतरते ही वो फिर वही भावहीन लड़की बन गई थी और वो जान गया कि मैं जिंदगी भर हर अनुभव को जस का तस अपनाएगी, यथाशक्ति उसका सामना करेगी, पर पहले से कुछ भापने या अटकलने की कोशिश कभी नहीं करेगी। शायद यही अनजानापन उसकी आंखों को इतना पारदर्शी बनाता था और चेहरे को किसी व्यक्ति के बजाय एक प्रतिरूप का रूप देता था, मानो उसे नागरिक सद्गुण या किसी यूनानी देवी की भूमिका के लिए चुना गया हो। उसकी गोरी त्वचा के नीचे बहता रक्त भड़कते आवेग से ज्यादा यौवन सहेजने वाला द्रव लगता था, और वो अमर यौवन कभी कठोर या भौंथरा नहीं, केवल आदिम और शुद्ध लगता था। इन्हीं विचारों में डूबे आर्चर ने अचानक पाया कि वो मे को किसी अजनबी की आंखों से देख रहा है। उसने झटपट विवाह भोज और उस पर छाई मिंगट नानी की विराट उपस्थिति की यादों में शरण ली।
मैं उस विषय पर खुले आनंद से बोलने लगी, पर कितनी अचरज की बात है ना, मेडोरा मौसी आखिर आ ही गईं। एलन ने लिखा था कि दोनों की तबीयत सफर लायक नहीं, काश ठीक होने वाली वही होती। उसकी भेजी वो पुरानी नफीस लेस देखी आपने, वो जानता था कि ये घड़ी देर सवेर आएगी, पर न जाने क्यों सोचता रहा था कि इच्छा शक्ति से उसे हमेशा टालता रह सकेगा। हाँ मैं नहीं, हाँ सचमुच सुंदर थी, आर्चर ने खोए खोए स्वर में कहा, और हर बार एलन के दो अक्षर सुनते ही उसे डर घेर लेता कि उसका सावधानी से रचा संसार ताश के महल सा भर भरा जाएगा। थकी तो नहीं हो, पहुँच कर चाय मिल जाए तो अच्छा रहेगा, मौसियों ने पक्का सब कुछ बढ़िया सजा रखा होगा। वो जल्दी जल्दी बोलता गया और उसका हाथ थाम लिया, और मे का ध्यान झट बाल्टीमोर चांदी के उस शानदार चाय कॉफी सेट पर चला गया जो ब्यूफर्ट दंपति का उपहार था
और जो लवेल मिंगट मामा की तश्तरियों थालियों से भी खूब मेल खाता था। बसंती सांझ ढलते रेल राइनबेक स्टेशन पर रुकी और वे प्लेटफॉर्म से होते हुए प्रतीक्षारत बग्घी की ओर बढ़े। वाह, वैन डर लाइडन दंपति कितने भले हैं, स्क्वाइटर क्लिफ से आदमी भेजा है हमें लेने, आर्चर ने सराहा जब बिना वर्दी का एक शांत शिष्ट व्यक्ति पास आकर नौकरानी से सामान लेने लगा। बड़ा खेद है साहब, उस आदमी ने संकोच से कहा, 2 लाख बीबियों के घर में एक छोटी दुर्घटना हो गई, पानी की टंकी रिस पड़ी। कल की बात है, आज सुबह खबर पाकर वैन डर लाइडन साहब ने पहली गाड़ी से गृह व्यवस्थापिका भेजी है, पैट्रून का घर पूरी तरह आरामदेह मिलेगा साहब, और 2 लाख बीबियों ने अपनी बावर्चिन भी भेज दी है, बिल्कुल राइनबेक जैसा ही लगेगा। आर्चर ने भावहीन दृष्टि से उसे देखा और वो आदमी और भी क्षमा भाव से दोहराने लगा, सचमुच बिल्कुल वैसा ही होगा साहब, भरोसा रखिए। तभी मे की उमंग भरी आवाज ने असहज चुप्पी तोड़ी, राइनबेक जैसा, पाट्रून का घर, अरे वो तो लाख गुना बढ़िया होगा, है ना?
न्यूलैंड वेंडर लाइडन दंपति ने हमारे लिए ये सोचा, कितने दयालु कितने प्यारे हैं, और वे चल पड़े। नौकरानी कोचवान के पास चमकते सुहाग बैग सामने की सीट पर, मैं उत्साह से बोलती रही, यकीन होता है मैं उस घर में कभी गई ही नहीं, आप गए हैं, वे गिने चुने को ही दिखाते हैं, पर एलन के लिए दरवाजे खोले थे, सुना है, एलन कहती थी बड़ा प्यारा घर है, अमेरिका में देखे घरों में वही अकेला है जहां वो खुद को पूरा सुखी सोच सकती है, तो वही सुख तो अब हम पाएंगे, है ना? आर्चर चहका और उसने लड़कों सी मुस्कान से जवाब दिया, हाँ ये तो हमारी किस्मत की बस शुरुआत है, वो शानदार किस्मत जो हम हमेशा साथ साथ भोगेंगे।